नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। परमाणु परम महतो त्वमादि अंत अंतर अंतर्वर्ती त्रय विधुरः आदौ अन्ते च सत्त्वानां यद्ध्रुवम् तद् अन्तरालेऽपि परमाणु परम महतः त्वमाद्यन्त अंतर अंतर्वर्ती त्रय विधुरः आदौ अन्तेऽपि सत्त्वानां यद्ध्रुवं तदेवान्तरालेऽपि परमाणु परम महतः त्वमाद्यन्त अन्तर्वर्ती त्रय विधुरः आदौ अन्तेऽपि च सत्त्वानां यद्ध्रुवं तदेवान्तरालेऽपि।
शब्दार्थ परमाणु सूक्ष्म कणों का, परम महंते परम महतो तथा सबसे बड़े परमाणुओं के संयोग से बने कणों का, त्वम तुम ही आदि अंत आदि तथा अंत अंतर तथा बीच में बढ़ते स्थित त्रय विधुर आरंभ अंत अथवा मध्य से विहीन आदौ प्रारंभ में अंते अंत में अपि भी च तथा सत्वानाम समस्त अस्तित्वों का यत जो ध्रुवम अचल तत वह एवं निश्चय है अंतराले मध्य में अपि भी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, आप इस दृश्य जगत के नन्हे से नन्हे कण परमाणु से लेकर विराट ब्रह्मांडों तथा समस्त भौतिक शक्ति तक की प्रत्येक वस्तु के आदि मध्य तथा अंत में विद्यमान है। किस पर भी आप नित्य हैं, जिसका न कोई आदि है न अंत है न मध्य है, आप अटल हैं। जब इस दृश्य जगत का अस्तित्व नहीं रहता तो आप आदि शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं। भाई, आप इस दृश्य जगत के नन्हे से नन्हे कण परमाणु से लेकर विराट ब्रह्मांडों तथा समस्त भौतिक शक्ति तक की प्रत्येक वस्तु के आदि मध्य तथा अंत में विद्यमान है। इस पर भी आप नित्य हैं, जिसका न कोई आदि है न मध्य न अंत, आप अटल हैं। जब इस दृश्य जगत का अस्तित्व नहीं रहता तो आप आदि शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं।
ब्रह्म संहिता
5-13 का कथन है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम न यौवनम च वेदे सुदुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की उपासना करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, परम अनादि रूपों में विस्तार करते हुए भी वही आदि पुरातन तथा नवजीवन से पूर्ण पुरुष हैं। ऐसे नित्य आनंद में तथा सर्वज्ञ ईश्वर को वेद ज्ञानी भी नहीं जान पाते। वे शुद्ध भक्तों के ही समक्ष सदैव प्रकट होते हैं। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के कारण हैं, उनका कोई कारण नहीं। वे कार्य कारण से परे हैं, वे शाश्वत हैं। ब्रह्म संहिता के एक अन्य श्लोक में कहा गया है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ईश्वर विराट ब्रह्मांड तथा परमाणु के भीतर उपस्थित है। इस विराट ब्रह्मांड के भीतर ईश्वर की उपस्थिति यह सूचित करती है कि उनके बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। विज्ञानियों का कहना है कि जल की उत्पत्ति हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से होती है, किंतु जब वे सागर की अनंत जलराशि देखते हैं तो उनकी बुद्धि चकरा जाती है। इतनी मात्रा में हाइड्रोजन कहाँ से आई? उनका विचार है सभी वस्तुएं रसायनों से उद्भूत है, किंतु फिर भी वे सारे रसायन कहाँ से आए इसको वे नहीं जानते। क्योंकि श्री भगवान समस्त कारणों के कारण है, अतः वे रासायनिक विकास के लिए प्रचुर मात्रा में रसायन उत्पन्न कर सकते हैं। हम यह देख रहे हैं कि जीवात्माओं से रसायन तैयार होते हैं। उदाहरणार्थ संतरे के वृक्ष से कई टन सिट्रिक अम्ल उत्पन्न होता है। यह सिट्रिक अम्ल संतरे के वृक्ष का कारण नहीं, अपितु वृक्ष इस अम्ल का कारण है। इसी प्रकार श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के कारण हैं। वे सिट्रिक अम्ल को उत्पन्न करने वाले वृक्ष के कारण हैं। बीजम माम सर्वभूतानाम, भक्त जानते हैं कि दृश्य जगत के कारण स्वरूप आदि शक्तियां रसायनों में नहीं अपितु श्री भगवान में निहित हैं, क्योंकि वे ही रसायनों के भी कारण हैं। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति परमेश्वर की शक्ति से हुई है, और जब प्रत्येक वस्तु का विलय हो जाता है तो आदि शक्ति पुनः परमेश्वर के शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए यह श्लोक है, आद्यावंतेपि च सत्वानां यद्ध्रुवं तदेवांतरालेपि। ध्रुवम का अर्थ है आदि अचल या स्थायी। अभिचल सत्य श्री कृष्ण है, यह दृश्य जगत नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, अहम् आदिर् हि देवानाम् तथा मतः सर्व प्रवर्तते। श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आदि कारण है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में पहचाना, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, तथा ब्रह्म संहिता में भी उन्हें आदि पुरुष के रूप में बताया गया है, गोविंदम आदि पुरुषम। वही समस्त कारणों के कारण है, चाहे वो आदि में हो, अंत में हो अथवा मध्य में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की
एक बहुत बड़े भक्त जिनका नाम चित्रकेतु महाराज था, वे भगवान शंकरषण की स्तुति कर रहे हैं। नारद जी के उपदेश से उन्होंने एक मंत्र का जप किया, और उस मंत्र को केवल 7 दिन जपने से वे विद्याधर बन गए, विद्याधरों के अधिपति हो गए, और उन्हें भगवान शंकरषण का दर्शन हुआ। दर्शन होने पर वे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में वे कहते हैं परमाणु परम महत्व, परम अणु सबसे छोटी छोटी वस्तुओं का परम अणु, और परम महत्व और परम महान सब बड़ी बड़ी से बड़ी वस्तु का, त्वम आदि अंत। हे प्रभो, इस संसार की छोटी छोटी वस्तुओं का और बहुत बड़ी बड़ी वस्तु का, सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का भी आप आदि हैं और अंत हैं और अंतराल भी है, पर त्रय विधुरा, और आपका न आदि है न अंत है न मध्य है। श्री भगवान सभी वस्तुओं के मूल कारण हैं, प्रारंभ हैं, इसीलिए उनको आदि कहते हैं। आदि श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, समस्त वस्तुओं के, समस्त जीवों के जन्मदाता वही हैं। श्री ब्रह्मा जी के भी जन्मदाता हैं, भगवान शिव भी उन्हीं से उत्पन्न हुए। अहम आदिर्हित देवानाम महर्षिणाम च सर्वसः, भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं मैं समस्त देवताओं का और ऋषियों का आदि हूं। अहम आदिर्हित देवानाम महर्षिणाम च सर्वसः, सर्वसः सबका आदि मैं हूं। दसवें स्कंध के, दसवें अध्याय के एक श्लोक में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं सबका जन्मदाता हूं, प्रभव मुझसे ही प्रकृष्ट जन्म हुआ है सबका, सभी जीव मुझसे ही प्रकट होते हैं, और मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और मैं ही सबका प्रवर्तन करता हूं, सभी चलते जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, सभी क्रियाएं मेरे द्वारा ही हो रही हैं, जितने भी जीव हैं सबको मैं पैदा किया हूं। केवल जीव ही नहीं, जड़ वस्तुएं भी, भूमि जल अग्नि आदि, और जीवों के शरीर सबको मैंने उत्पन्न किया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और मुझसे ही सबका प्रवर्तन होता है, सब काम करते हैं, संसार में जो कुछ हो रहा है सब भगवान कृष्ण की शक्तियों के द्वारा, कोई जी रहा है, कोई खा रहा है, पी रहा है, या बोल रहा है, चल रहा है, कोई काम करता है, उसमें भगवान की ही शक्ति काम करती है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, इति मत्वा इस बात को मान करके कि कृष्ण ही सबके जन्मदाता हैं और सभी के कर्मों के प्रवर्तक हैं, उन्हीं के कारण कोई जीव देखता है, सुनता है, संसार का सारा कार्य उन्हीं के डायरेक्शन में चल रहा है, इस बात को मत्वा मान करके बुधा बुद्धिमान लोग माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। भगवान कृष्ण सबके जन्मदाता हैं और सबके कर्मों के ये प्रवर्तक हैं, इसको मानना चाहिए। इति मत्वा भगवान कहते हैं ऐसा मान करके बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं। बुद्धिमान वही है जो भगवान की बातों को स्वीकार करे। भगवद गीता में भगवान ने कहा है मेरा भजन करो, यह शरीर क्षणिक है, नाशवान है, इसको पा करके मेरा भजन करो। अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्त भजस्व माम, यह शरीर प्राप्त करके सबसे मुख्य काम क्या है, किसके लिए ये मानव शरीर मिला है। भगवान स्वयं कहते हैं इस शरीर पा करके मेरी भक्ति करो, तो भक्ति के लिए ही यह देह मिला है। ऐसे अनंत अनंत जीव है, शरीर अनंत है, 84 प्रकार का है, तो 84 प्रकार के शरीरों में और कोई भी भक्ति की सुविधा नहीं है। केवल मनुष्य देह में हमें भक्ति करने की सुविधा है। कैसे भक्ति करेंगे? सबसे पहले अपनी मान्यता को बदलना होगा। हम भगवान कृष्ण को समझें इति मत्वा कि भगवान सबको जन्म दिए हैं और सबका पालन कर रहे हैं, सब में शक्ति दे रहे हैं कुछ भी करने की। इति मत्वा भजन्ते माम, तो जो बुद्धिमान होते हैं जो इस बात को मान करके मेरी भक्ति करते हैं, इस बात की मान्यता के लिए बहुत जरूरी है कि भगवान की बातों का, भगवद गीता का प्रचार किया जाए। श्रील प्रभुपाद की यह योजना है सारे विश्व में लगभग समस्त भाषाओं में भगवद गीता का प्रचार किया जाए। भगवद गीता के समान और कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान की वाणी है। या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मत विनिश्चिता, कमल नाभ भगवान के मुख कमल से निकला हुआ यह उपदेश है। सबके हित के लिए इसका उपदेश किए हैं। तो इसको मानना चाहिए। मानेंगे कैसे? जब जानेंगे इस बात को। बहुत से लोग तो इस बात को जानते ही नहीं है कि भगवान कृष्ण ही संसार को चला रहे हैं और वही इसको उत्पन्न किए हैं। ये लोग सोच लेते हैं कि कृष्ण भी एक देवता है, जैसे शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी या गणेश जी हैं, वैसे कृष्ण भी हैं, तो उनका भी भजन करना चाहिए। केवल ऐसी मान्यता है, लेकिन असली मान्यता है कि कृष्ण परम ईश्वर हैं, सबको जन्म दिए हैं, यहां तक कि शंकर गणेश सबको वही जन्म दिए हैं, यह मानना चाहिए। यदि कोई बुद्धिमान है, विद्वान है, तो इस बात को मानेगा। भगवान कहते हैं इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा मान करके मेरा भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं वे स्वयं बताते हैं। मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंतः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत चित्ता, मुझमें उनका चित्त लगा रहता है। मन उनका मुझमें लगा रहता है, मत चित्ता मदगत प्राण है और उनकी इंद्रियां मेरी सेवा करती हैं। बोधयंत परस्परम, और वे एक दूसरे को समझाते रहते हैं, बताते हैं कृष्ण का भजन करना चाहिए। बोधयंत परस्परम, जैसे हम लोग प्रतिदिन भगवद गीता सुनते हैं, श्रीमद भागवतम सुनते हैं, तो ये है बोधन। प्रतिदिन परस्पर प्रति बोधयंत परस्परम, कथयंत माम नित्यम, और नित्य प्रतिदिन मेरे विषय में कथन करते हैं। तुष्यंति च रमंति च, और यही उनका संतोष है, इसी में सुख प्राप्त करते हैं। भगवान की महिमा बखानने में, बताने में और सुनने में आनंद लेते हैं। रमंति च, और इसी में रम जाते हैं, यही उनका काम है। गीता को पढ़ना, फिर समझाना या प्रचार करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, यही काम है। तुष्यंति च रमंति च, यही उनका तोष है, यही उनका आनंद है और यही उनका रमण है, इसी में रमते रहते हैं। तो ये केवल श्रील प्रभुपाद की योजना नहीं है, स्वयं भगवान की, जिन्होंने गीता का उपदेश किया है, वो स्वयं चाहते हैं कि इस भगवद गीता का व्यापक प्रचार होना चाहिए। अन्यथा जीव मनुष्य शरीर पा करके भी इस लाभ से वंचित हो जाएंगे, तो इससे बड़ा घाटा और कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्थापित यह इस्कॉन मूवमेंट इस अवसर को प्रदान कर रहा है, गीता को छाप करके और प्रचार करते हैं भक्त लोग। यह पुनीत कार्य है, बहुत पवित्र कार्य है और बहुत महान कार्य है। भगवद गीता पढ़ करके इस काम में और उत्साह होना चाहिए। इस संसार की परम छोटी से छोटी वस्तु, परम अणु, परम अणु कहते हैं जिस अणु को, जिस टुकड़े को फिर काटा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता है, उसको परमाणु परमाणु कहते हैं। इतना अड़ू कि उसके फिर दो टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे सूक्ष्म वस्तु, छोटी वस्तु, वो भी, और सबसे बड़ी वस्तु ब्रह्मांड या पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, बड़ा बड़ा जीव जैसे हाथी, ये सबके जन्मदाता भगवान कृष्ण हैं। आदि अंत और सबका अवसान भी वही है। अंत में प्रलय हो जाता है, सबका विनाश हो जाता है, सब वस्तुएं कहां चली जाती हैं, भगवान के अंदर चली जाती हैं। अंतर्वर्ती, और जब सृष्टि का विनाश हो जाता है तब भी वे रहते हैं, मध्य में भी रहते हैं और अंत में भी रहते हैं, पर त्रय विधुरा, और स्वयं उनका तीन नहीं होता है, त्रय विधुरा तीनों से हीन रहते हैं। भगवान का आदि नहीं है, अंत नहीं है और मध्य भी नहीं है। आदि और अंत उसका होता है जिसमें मध्य भी होता है, लेकिन भगवान का आदि नहीं है, अंत नहीं है, इसीलिए वे अंत से भी हीन है, मध्य से भी हीन है। भगवान का न आदि है, न अंत है, न मध्य है, इन तीनों से विधुर है, त्रय विधुरा, विधुर मतलब हीन, तीनों से हीन है। अन्य सब जीवों का या वस्तुओं का आदि है, मध्य है और अंत है, होता रहता है। तो जिस सभी जीवों के आदि और अंत में, इसके सृष्टि के पहले भी भगवान थे और सृष्टि के नष्ट होने के बाद भी रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सृष्टि जब नहीं हुई थी, इसके पहले इस संसार में, इस ब्रह्मांड में केवल अंधकार था, और भगवान के नाभि से एक कमल का जन्म हुआ, उस कमल पर श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। श्री ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं अकेले कौन हूं, अरे केवल जल है, और इस कमल का कारण कुछ होगा। सोचने लगे तो कमल के नाल से भीतर गए, लेकिन बहुत काल बीतने के बाद भी वे भगवान के नाभि तक नहीं पहुंच पाए। असहाय थे, अकेला सोच रहे थे, इस कमल का क्या कारण है। कमल का कारण तो भगवान का नाभि था, भगवान का सुंदर विग्रह शरीर, लेकिन वहां तक तो नहीं पहुंच पाए। अंत में निराश होकर के कमल के फूल पर पुनः लौट आए और बैठे, बैठ करके वे ध्यान करने लगे। भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लगे। संस्कार तो था ही, जो भगवान का ध्यान करते करते लाखों वर्ष बीत गए। अंत में श्री भगवान ने इतना ही कहा, वो भी समुद्र के तरंगों पर आवाज आई, नीचे से आवाज आ रही थी, तप तप, तप करो तप करो, ये आदेश हुआ भगवान का, तप करो तप करो। तब अपने इंद्रियों को समाहित करके, अपने मन को एकाग्र करके श्री ब्रह्मा जी तप करने लगे। तप करते करते अंत में उन्हें वैकुंठ का दर्शन हुआ, भगवान के धाम का, और उस धाम में लक्ष्मी जी के साथ श्री भगवान जन दर्शन दिए। तो ब्रह्मा जी ने उनसे मांगा कि हमको सृष्टि करने की शक्ति दीजिए और ज्ञान दीजिए, तो श्री भगवान ने उनमें ज्ञान दिया, उनको ज्ञान दिया और सृष्टि करने की शक्ति दिया, तब ये सृष्टि हुई। तो भगवान सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के अंत में भी रहेंगे, परंतु ये देवता सभी सृष्टि के बाद हुए, ब्रह्मा जी से सबका प्राकट्य हुआ। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने चार कुमारों की सृष्टि किया, मानस पुत्र, मन में संकल्प किए कि मुझे पुत्र प्राप्त होना चाहिए, तो चारों प्रकट हो गए, सनक, सनंदन, सनत कुमार इत्यादि। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चार लड़के हुए। वे जन्म से ही विरक्त थे और भगवान में मन लगा हुआ था, तो इनको जन्म लेने पर श्री ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया, तुम लोग सृष्टि करो, संतान उत्पन्न करो। पर चारों भाइयों ने पिता की आज्ञा को ठुकरा दिया, कहा कि नहीं, हम भगवान की भक्ति करेंगे। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि इतने परिश्रम से चार पुत्र हुए और ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, लेकिन वे विचार किए कि ठीक ही निर्णय किए हैं भक्ति करने का, तो क्रोध को रोक लिए, वाणी से कुछ कहे नहीं। उनके भ्रू मध्य में क्रोध प्रकट हो गया, उसी क्रोध से रुद्र हुए। ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र का जन्म हुआ। तो फिर ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया, तुम सृष्टि करो, तो श्री रुद्र अर्थात भगवान शंकर कहे कि हमको स्थान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने उनको स्थान दिया 11, और 11 पत्नियां दिए, इनसे सृष्टि करो। परंतु रुद्र सब अपने स्वभाव के अनुसार सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी तो ध्यान मेरा लग गए, बाद में उन्होंने ध्यान दिया अपने पुत्र के सृष्टि पर, रुद्र के सृष्टि पर, तो उन्होंने देखा कि ये सब भूत प्रेत भी सांप बिच्छू यही भर दिया। तब ब्रह्मा जी कहे कि अब तुम सृष्टि बंद करो, ये सृष्टि की जरूरत नहीं है, अब तुम तपस्या करो। तो शिव जी सृष्टि बंद करके फिर तप करने लगे। ये सब भागवत में कथाएं हैं, लेकिन भगवान का आदेश है तप करने का। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की आज्ञा है तप करने की। तप मुख्य है अपने मन पर कंट्रोल करना, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल करना। भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन के लिए इन नियमों का पालन जरूरी है। कम सोना चाहिए, कम खाना चाहिए, और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही तपस्या है। जो भगवान की आज्ञा थी ब्रह्मा जी के लिए कि तप करो तप करो, वह आज्ञा परंपरा से हम सबको प्राप्त है। हमें जरूर तपस्या करनी चाहिए। ये तपस्या है भगवान के नाम का जप करना, मंगलारती में उठना और अपने क्रम के अनुसार फिर गीता बांटना। आलस छोड़ करके जाना चाहिए समाज में, लोगों से आग्रह करना चाहिए कि ये भगवद गीता लीजिए, आपका कल्याण होगा, भगवान ने इसके लिए उपदेश किया है। तपस्या है जरूर, कुछ कठिनाई है लेकिन अवश्य करना चाहिए, यही भगवान की आज्ञा है। चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं कि भगवान सबसे छोटी छोटी और सबसे बड़ी बड़ी वस्तुओं के जन्मदाता हैं, उनका जन्म स्वयं नहीं है, सबके आदि कारण है। इस बात को मान करके हमें भक्ति करनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव स्वमेता, इस बात को मान करके मेरी भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।
हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। आपने बड़े ही अच्छे ढंग से बताया ब्रह्मा जी के तपस्या के बारे में। ये महाराज, कभी कभी जब हम भागवतम में कुछ, जैसे आप बता रहे थे कि ब्रह्मा जी के रुकुटी से वो रुद्र उत्पन्न हुए और कैसे चतुष्कुमार भी उत्पन्न हुए थे पहले, तो कभी कभी जिस तरह के विवरण भागवतम में आते हैं कि ये उत्पन्न हुए या किस तरह से सृष्टि की रचना हुई, अहंकार और मन बुद्धि किस तरह से वो सम्मिलित हुए, अलग अलग तरह के चीजें, तो हमें समझ में नहीं आता है। जैसे हम श्रद्धा रखते हैं क्योंकि आचार्यगण कह रहे हैं, लेकिन हमें एक तरह से वो प्राकृतिक नहीं लगता है, तो कैसे इसको समझें?
जो समझ में आ रहा है उसको समझिए, और जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसके लिए समय बर्बाद मत कीजिए। समझ में आया ना कि भगवान की आज्ञा है तप करने की, भगवान की आज्ञा है गीता बांटने की, ये काम करना चाहिए। जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत है,
अरे
उसको केवल सुनना चाहिए। तो आदि शक्ति का अर्थ है भगवान शक्ति के रूप में रहते हैं। भगवान की वो शक्ति हमेशा से है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी। जगत का विनाश हो जाता है लेकिन भगवान की शक्ति ज्यों की त्यों रहती है। वह आदि शक्ति कभी कभी माता दुर्गा के रूप में देखी जाती है, लेकिन वो है अनादि काल से अनंत काल तक।
भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि तप करो, तो ब्रह्मा जी ने क्या तप किया?
ब्रह्मा जी बिना खाए पिए, बिना सोए बैठे बैठे ध्यान कर रहे थे भगवान पर, ध्यान लक्षण तप किए। यही तप था उनका। कभी कभी तो 9 बजे तक तप करना भी बड़ा कठिन होता है, पर इतना तप नहीं कर पाएंगे तो कैसे सिद्धि पाएंगे? तपस्या से सिद्धि मिलती है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। जप करने से सिद्धि मिलेगी, सिद्धि मिलेगी निश्चित। जप करना चाहिए, भले उसके लिए भोजन कुछ देर से हो, कोई बात नहीं। ये प्रतिदिन भागवत पढ़ना है, गीता पढ़नी है तो पढ़नी है। मुख्य काम यह है भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना। खाना मुख्य कार्य नहीं है, वो बाद में हो जाएगा। या उसमें भी कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, थोड़ा कम होगा, टेस्टफुल नहीं होगा, लेकिन शरीर चलाने के लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो उसमें संतोष करना चाहिए। नींद में कुछ कटौती करनी चाहिए, ज्यादा देर तक न सो करके, केवल शरीर चलाने के लिए सोना है 5 घंटा या 6 घंटा। दिन में तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, रात को अवश्य जगना चाहिए, जगना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए, व्यर्थ नहीं जगना चाहिए, टीवी देखने के लिए या और कुछ करने के लिए नहीं जगना चाहिए, सोना चाहिए, सोने के लिए समय है। अगर कुछ कटौती करना है तो भक्ति के लिए करनी चाहिए, कि भगवान का जप करने में, कुछ पढ़ने में समय लगाना चाहिए। सोने से पहले कुछ सत्शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है, भागवतम पढ़ करके, गीता पढ़ करके सोना चाहिए। हमारे लिए यही तपस्या है। ब्रह्मा जी तो समर्थ थे, वे अकेले जल में थे, कमल के फूल पर, चारों तरफ प्रलयकालीन जल था और जल में हिलोरे उठ रही थी, तूफान आ रहा था। एक बार तो ब्रह्मा जी गिर गए थे कमल पर से पानी में, लेकिन भगवान की याद करके फिर उठ गए। हम लोगों पर तो ऐसी विपत्ति नहीं है, आनंद से रह रहे हैं। केवल ध्यान दे करके भगवान का जप करना है, पढ़ना है, सुनना है, और कृष्ण भावना का प्रचार करना है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। महाराज आप जैसे बता रहे हैं कि रोज शास्त्रों का, भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, तो आप कुछ और भागवतम के भागवतम के बारे में कुछ और ऐसा बता सकते हैं जिससे और प्रेरणा मिले भागवतम पढ़ने की?
भगवद गीता के विषय में तो बता थोड़ा सा, ये भगवान का उपदेश है। पहले भक्तों को इस पर दिल विश्वास रखना चाहिए, विश्वास सबसे बड़ा धन है। विश्वास, ये भगवान की वाणी है और इसे फैलाना ही है, इसी में विश्व का कल्याण है, जनता का कल्याण है। फैक्ट्री चलाने में या ऑफिस खोलने में कल्याण नहीं है, कल्याण है गीता पढ़ने में। अपने विश्वास को पहले दृढ़ करना चाहिए और फिर लोगों में प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्ण।
प्रणाम। अभी गीता भी प्रणाम करते हैं महाराज जी, तो कुछ स्कूल की टीचर वगैरह हमसे प्रश्न करती हैं कि अभी आप बता रहे थे कि प्रथम जो है ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, तो उनका प्राय प्रश्न होता है कि सर्वप्रथम पृथ्वी कब कैसे किसने उत्पन्न की, मतलब पृथ्वी का कैसे उत्पन्न हुआ और पहला मानव कौन है। हमने कहा हम अपने गुरु महाराज जी आने वाले, उनसे पूछ के आपको बताएंगे। तो हम तो उत्तर नहीं दे पाए, पर आपसे जानना चाहते हैं कि सर्वप्रथम पृथ्वी का उत्पन्न कैसे हुई और पहले मानव कौन है, ये प्रश्न।
इस पृथ्वी की रचना का वर्णन पहले है भागवत में, और मनुष्य की सृष्टि ब्रह्मा जी ने अपने छोटे पुत्र को जन्म दिया सबसे अंत में, जो ये मनु महाराज कहलाए। मनु को उन्होंने आज्ञा दिया तुम सृष्टि करो, और इसके साथ ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से दो भाग अपने शरीर को बांटा है। एक शरीर का मनु भावपूर्ण भाव विभाजन किया, शरीर के दाहिने भाग से एक पुरुष हुआ जिसका नाम मनु हुआ, और बाएं भाग से शत्रुपा नाम की एक कन्या हुई। तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया तुम दोनों मिलकर के सृष्टि करो, तो उन्हीं दोनों ने मानव की सृष्टि किया। मनु और शत्रुपा ने, तो मनु महाराज जी के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, इन्हीं से सारी सृष्टि हुई है। पृथ्वी पहले थी, पहले प्लॉट होना चाहिए ना, पृथ्वी की भी सृष्टि अजीब है। पृथ्वी रच करके ब्रह्मा जी ने मनु का आदेश दिया सृष्टि करने की, लेकिन उस समय पृथ्वी का पता नहीं था। पृथ्वी रसातल में डूब चुकी थी, सब जगह प्रलय था, प्रलय जल। तो मनु महाराज ने पूछा कि मैं कहाँ सृष्टि करूं, कोई साइट बताइए, पृथ्वी तो जल में डूबी है, अब इसमें से कौन निकाले। तब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, उसी समय उनके नाकों से छींक उत्पन्न हुई, छींक से एक चना के बराबर बाराह शिशु जन्म लिया, बाराह भगवान है। फिर गरजने लगे और ब्रह्मा जी के देखते देखते ये बड़े हाथी के समान हुए, और फिर बढ़ करके बहुत बड़े पर्वत के रूप में है बड़ा भगवान। उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया, वहां जाने पर राक्षस लोग धरती की रक्षा कर रहे थे, वहीं डुबा दिए थे, भगवान उनकी परवाह नहीं किए और पृथ्वी का उद्धार किए अपने दांतों पर लेकर के आ रहे थे। तो बीच में हिरण्याक्ष बहुत विरोध किया कि हमारा धन है कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को ला करके स्थापित किया। पृथ्वी को अपनी आधार शक्ति से भगवान ने स्थापित किया जल के ऊपर, और तब सृष्टि प्रारंभ हुई।
हरे कृष्ण महाराज।
कौन बोल रहे हैं?
इधर पीछे आगे। हरे कृष्ण महाराज। तो आपने कहा कि कृष्ण भावना में कम सुनना चाहिए, कम खाना चाहिए और प्रचार ज्यादा करना चाहिए। तो गीता में तो कहा था स्थित प्रश्न व्यक्ति या साक्षात्कार व्यक्ति प्रचार करना चाहिए, परंतु कृष्ण भावना में हम देखते हैं कि हम नए नए प्रचारक या यंग जो प्रचार करते हुए बहुत सारी माया के द्वारा आक्रमण होता है, और बहुत सारी तकलीफें होती है, उस समय कोई यदि प्रचारक प्रचार करते करते यदि उसको पतन हो जाए और यदि वो पुनः प्रचार कर सकता है या उस और उसकी क्या गति होती है?
ये प्रचार करने वाले का कभी पतन नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। जो भगवान का काम कर रहा है भगवान उसे गिरने नहीं देते हैं, लेकिन वो अपनी गलती से गिरता है तो उसके लिए क्या कहा जाए। ये शब्द गलत है, प्रचार करने वाले का उत्कर्ष होता है, भगवान का काम कर रहा है ना, उसका पतन नहीं होता है। पतन होता है कुछ और कार्य से, जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि युक्ता हर विहार से युक्त कर्म सु, युक्त चेष्टा से कर्म सु, युक्त आहार विहार करना चाहिए, युक्त भोजन भी और युक्त विहार भी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और स्वप्ना व बोध जगना भी चाहिए ठीक से और सोना भी चाहिए ठीक से, स्वप्न और अवबोध अगर कोई ठीक से करेगा इसको तब योग उसका दुख दूर करेगा। योगो भवति दुखः, ठीक से उचित भोजन करना चाहिए। उचित का अर्थ है जितना खाना है उतना ही, जहां जो शास्त्रों में वर्णित है ऐसे शुद्ध शाकाहारी प्रसाद ले। युक्त सबसे है कि पहले भगवान को अर्पण करके तब भोजन करें। कोई भी व्यक्ति जो खाता है लेकिन भगवान को अर्पण नहीं करता है तो युक्त भोजन है ही नहीं। पहला युक्त है भगवान को अर्पण, दूसरा किस समय खाए कितनी मात्रा में खाए ये सब विचार करना चाहिए। कई लोग खा करके बीमार हो जाते हैं, उल्टी करने लगते हैं, तो वो अयुक्त भोजन कर लिए। खाना चाहिए कम, लेकिन बहुत चाण लेते हैं, पेट भर करके खा लेते हैं और बाद में अस्पताल जाते हैं। इस तरह से भाग नहीं करना चाहिए। कम भोजन की प्रशंसा है लेकिन अति भोजन की निंदा है।
महाराज जी, मेरा ही सवाल है, हम संसार में भगवान इतने सुंदर है, भगवान की हर क्रियाएं इतनी सुंदर है, उनके गुण इतने रूप सब कुछ होते हुए भी हम आसक्त इतने प्रयास के बाद भी नहीं हो पाते, लेकिन संसार की छोटी चीजों के प्रति आसक्त इतने जल्दी हो जाते हैं।
इसका कारण है इस यह कि हमारी इंद्रियां केवल बाह्य विषयों को देखती हैं, स्पर्श करती हैं और आस्वादन करती हैं। इस कारण से सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति जल्दी हो जाती है, क्योंकि इंद्रियां बाहर की वस्तुएं देखती हैं और भगवान अप्राकृत हैं, प्रकृति से परे हैं। बहुत सुंदर होते हुए भी भगवान में मन नहीं लग पाता है, पर वास्तव में भगवान श्री हैं और वे सुंदर हैं, परम मधुर हैं। इसको सुन करके बारंबार धारणा करनी चाहिए, सुनना चाहिए, तो सुनते सुनते हो जाएगा। जो वस्तु अप्राकृत है उसके विषय में सुनना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, बारंबार अभ्यास करने से उसमें आसक्ति हो जाएगी। और जो बाह्य वस्तुएं हैं इंद्रियों से अनुभव करने लायक, उनको नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। हम लोग रात दिन संसार में रह रहे हैं और संसार के बारे में ही सुनते हैं, देखते हैं, इसीलिए संसार धसा हुआ है हृदय में। इसको निकालना है संसार को, तो इसके लिए परहेज करना चाहिए, नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं खाना, मतलब संसारिक चीज। अधिक से अधिक भगवान के विषय में सुनना चाहिए, अधिक समय तक सुनना चाहिए। जब धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा भगवान का, यही हृदय अशुद्ध है, इसलिए अशुद्ध हृदय में भगवान की स्फुरना नहीं हो पाती है, पर सुनते सुनते होगी। भगवान कान के रास्ते से प्रवेश करेंगे हृदय में, प्रविष्ट कर्ण रंध्र नरः। और हृदय में जब प्रवेश करते हैं तो हमारी वासना सब खत्म हो जाती है। अभी वासना जमी हुई है हृदय में, वो जल्दी नहीं जाएगी। बारंबार अभ्यास करने से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, बारंबार इस मंत्र को जपेंगे, बोलते रहेंगे, तब हृदय की वासना धुल जाएगी। अधिक से अधिक जपना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। अधिक से अधिक जपना, अधिक से अधिक टाइम जपना। जब मन में स्मरण आ जाए तो भगवान का नाम जपना ही चाहिए।
हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण महाराज। आप बोले कि भक्त का पतन नहीं होते। अच्छा, जो भक्त शादी करते इसका पतन होता ना? नहीं,
शादी करना ही पतन नहीं है। पतन का अर्थ कुछ और है। पतन का अर्थ है शादी करना, पतन नहीं। शादी करना तो ये शास्त्र में लिखा गया है। मनु महाराज ने विवाह किया, प्रियव्रत ने विवाह किया। पतन का अर्थ है गिर जाना, ऊपर से नीचे गिर जाना। जो पतन का अर्थ है विवाह नहीं किए हैं फिर भी मन किसी स्त्री में चला जाना, और मन ही नहीं शरीर की और इंद्रियां, आंख कान चला जाना, ये भी पतन है। किसी स्त्री के विषय में ब्रह्मचारी होकर के भी यदि कोई सुनता है तो वह पतित है। गृहस्थ को पतित नहीं कहा गया है यदि वह अपनी पत्नी के साथ है, विवाहिता पत्नी के साथ। यदि वह शास्त्र की आज्ञा की अवहेलना करता है, नहीं मानता है, तो वह पतित है। स्त्री में ही रात दिन मग्न रहता है, स्त्री को देखता रहता है, सुनता रहता है स्त्री की बात, तो वह पतन है। केवल विवाह करके स्त्री के साथ रहना यह पतन नहीं है। पतन है उसका जो इस जीव का प्रयोग भगवान में नहीं करता, भगवान की बात नहीं बोलता, भगवान का नाम नहीं जपता, और संसार की बात बोलता रहता है। इसी प्रकार से आंख द्वारा जो भगवान का दर्शन करता है, शास्त्र पढ़ता है, वह ठीक है, चाहे गृहस्थ हो फिर भी वह पतित नहीं है। विश्वास इस बात का गीता कि गीता भगवान की आज्ञा है, वाणी है, साक्षात भगवान की वाणी है, तो हमें इसको फैलाना है, देना है। जैसे डॉक्टर किसी रोगी को सलाह देता है कि ये दवा तुम खाओ, जरूर ठीक हो जाओगे, तो इस तरह से हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए कि ये भगवद गीता है और इसको पढ़ने से निश्चित कल्याण होगा, भगवान में मन लगेगा। इस प्रकार का विश्वास खुद अपने में होना चाहिए और तब डॉक्टर बन करके दवा दें। विश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक चीज हमने बताया ना कि विश्वास बढ़ाने के लिए सुनना चाहिए भगवद गीता के विषय में और पढ़ना चाहिए। भगवान बारंबार गीता में कहे हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूं, ऐसा करोगे तो तुम मेरे पास आओगे। गीता में इस बात को कहे हैं प्रति जाने प्रियो सुने, तुम मेरे प्रिय हो, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी नाम नमस्कृ, मुझमें मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, ऐसा करने पर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मैं सत्य बोल रहा हूं और मैं शपथ करके कह रहा हूं प्रति जाने प्रियोस में, तुम मेरे प्रिय हो। सभी जीव भगवान के प्रिय हैं क्योंकि भगवान ने सबको पैदा किया है, अपनी संतान पर सबको प्रेम होता ही है, तो श्री भगवान का बहुत प्रेम है अपने जनों से, वे चाहते हैं कि ये सभी भगवान कृष्ण से प्रेम करें। तो प्रेम तभी करेंगे जब वे गीता पढ़ेंगे, ये विश्वास रह करके बांटना चाहिए गीता। जय राधे।